ॐ तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयताम सुरतर पंगर मम मंद मतर्गति मत सर्वस्व पदां भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी मृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंध के अध्याय 20 का 22 नंबर का श्लोक। अष्टम स्कंध अध्याय 20 श्लोक 22 बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। काये बलिः तस्य महाविभूतेः सह ऋत्विक आचार्य सदस्यः एतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूत इन्द्रिय आशय अर्थ आशय जीवयुक्तम् काये बलिस्तस्य महाविभूतेः काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सह सहर्त्विगाचार्य सदस्य एतत् सहर्त्विगाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाश्रय जीवयुक्तम् काये बलिस्तस्य महाविभूतेः काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सहर्त्विगाचार्य सदस्य एतत् सहर्त्विगाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाश्रय जीवयुक्तम् काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सहर्त्विगाचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाश्रय जीवयुक्तम् माता जी काये शरीर में बलि महाराज बलि तस्य भगवान का महाविभूते है समस्त अद्भुत ऐश्वर्यों से युक्त पुरुष का सह ऋत्विक आचार्य सदस्य समस्त पुरोहितों आचार्यों तथा उस पवित्र सभा के सदस्यों सहित एतत् यह ददर्श देखा विश्वम संपूर्ण ब्रह्मांड त्रिगुणम तीन गुणों वाले गुणात्मक ऐसे समस्त गुणों के स्रोत में भूत भौतिक तत्वों समेत इंद्रिय इंद्रियां अर्थ इंद्रिय विषयों सहित आसक्त मन बुद्धि तथा अहंकार सहित जीव युक्तम समस्त जीवों के सहित अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहितों आचार्यों तथा सभा के सदस्यों सहित भगवान के विश्व रूप को देखा जो षड ऐश्वर्यों से युक्त था। उस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं विद्यमान थी, सारे भौतिक तत्व इंद्रियां इंद्रिय विषय मन बुद्धि अहंकार विविध जीव तथा प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म तथा उनके फल। तात्पर्य भगवद गीता में भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। कृष्ण हर वस्तु के उद्गम है, वासुदेव सर्वम इति कृष्ण सर्वस्व है, मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्व अवस्थित। सभी वस्तुएं भगवान के शरीर में विद्यमान हैं, फिर भी भगवान सर्वत्र नहीं है। मायावादी चिंतक सोचते हैं कि चूंकि भगवान पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु हो गए हैं, इसलिए उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, उनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है। किंतु वास्तव में उनका दर्शन सही नहीं है। यहाँ पर बलि महाराज भगवान के विराट रूप से दृष्टा थे और वह शरीर दिख रहा था, यह द्वैतवाद है। सत्य दो प्राणी होते हैं, एक दृष्टा और दूसरा दृश्य। दृष्टा पूर्ण का अंश होता है, किंतु वह पूर्ण के तुल्य नहीं होता। पूर्ण का अंश दृष्टा पूर्ण से अभिन्न होता है, किंतु अंश होने के कारण यह कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यह अचिंत भेदाभेद दर्शन है, जिसका प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप समस्त वैष्णवों के चरणों में नमस्कार करके हम लोग श्रीमद् भागवतम के कुछ अंश पर विचार करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं, इस समय भगवान वामन देव का प्रसंग चल रहा है। वामन देव के साथ बलि महाराज क्या व्यवहार किए, इस घटनाक्रम को हम लोग सुन रहे हैं। आप पहले से जानते हैं बलि महाराज स्वर्ग पर अधिकार कर लिए थे। देवता लोग बेघर हो गए थे। देवताओं की मां अदिति बहुत दुखी थी, अपने देवताओं के अपने पुत्रों के स्थान को वापस प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना की। इतना दत्तचित्त होकर के भगवान की आराधना की, भगवान 12 दिन के व्रत से संतुष्ट होकर के उसके सामने प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके अदिति को बहुत संतुष्टि हुई। अदिति भगवान की स्तुति करने लगी और भगवान के महिमा का निरूपण की, और उसमें यह भी कही कि आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान उसकी स्तुति से बहुत संतुष्ट थे और अपने से कहे, मातः, हे माता, मैं तुम्हारे हृदय की बात को मैं जानता हूँ। तुम क्या चाह रही हो वो पहले से मैं जानता हूँ। तुम चाह रही हो कि तुम्हारे पुत्रों का स्थान वापस मिल जाए और तुम अपने शत्रु की स्त्रियों को रोती हुई दिखना चाहती हो, लेकिन इस समय यह असंभव लग रहा है, क्योंकि बलि महाराज के अनुकूल ब्राह्मण हैं और काल रूप से मैं भी उनके अनुकूल हूं। पर इस समय बलि पर आक्रमण करना सुखद नहीं होगा। न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तथा पिपायो ममदे विचिन्त्य संतोषितस्य व्रतचर्ययाति। भगवान कह रहे हैं कि फिर भी मैं तो कोई न कोई उपाय सोचूंगा। तथा पिपायो ममदे विचिन्त्य, अब इस स्थिति में क्या उपाय किया जाए यह मेरे चिंतन का विषय है, क्योंकि ममार्चनम नार्हति गंतु मन्यथा श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्, क्योंकि मेरी अर्चना कभी निष्फल नहीं जाती है। यद्यपि बलि से युद्ध करना बहुत कठिन कार्य है, ये सुखद नहीं हो सकता, विजय की आशा नहीं है, लेकिन तुम्हारे व्रत से मैं संतुष्ट हूँ और बहुत श्रद्धा पूर्वक तुम व्रत का पालन की हो, तो इस विषय में हम कोई न कोई उपाय सोचेंगे। और अदिति को निर्देश दिए कि तुम अपने पति की सेवा करो, जैसा भगवान कहे अदिति वैसा ही की, अपने पति की सेवा की। और परिणाम यह हुआ कि भगवान अदिति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और संपश्य तो माता पिता देख रहे थे, उनके देखते देखते ही बटु बामनो बभुव, एक छोटा सा ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिए। और जैन ही उनको पता चला कि बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं, और तुरंत उस यज्ञ स्थान के ओर बढ़े। नर्मदा नदी के तट पर भृगु कच्छक संग नामक स्थान में यज्ञ कर रहे थे, और भगवान ब्रह्मचारी का रूप धारण करके कमंडल हाथ में लेकर के और आकाश के देवता छत्र अर्पित किए थे उसको धारण करके वन विभाग के अधिष्ठात्री देव दंड प्रदान किए थे, दंड को लेकर के बलि महाराज के यज्ञ के तरफ बढ़े। यज्ञ स्थान के तरफ जा रहे थे तो व्यचक्षता, उससे यज्ञ मंडप में जो भी उपस्थित थे बलि महाराज या उनके सहयोगी, तो वे लोग देखे बलि महाराज को, कह रहे कि आ रात, वे दूर से ही देखे लेकिन उनके दृष्टि के विषय में कह रहे हैं कि उदितम रवि यथा जैस उदितम रविम यथा, जैसे सूर्योदय होता है तो सूर्य बहुत दूर होता है लेकिन फिर भी आदमी उसका दर्शन कर लेता है क्योंकि सूर्य में बहुत तेज है। तो वैसे ही अभी वामन देव बहुत दूर थे लेकिन यज्ञ स्थल पर उपस्थित लोग वामन देव को देख लिए और उनको देखे कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो बहुत आश्चर्य में पड़े, ये कौन व्यक्ति हो सकता है, इतना तेज किसका है, क्या सूर्य देव यज्ञ देखने के लिए आ रहे हैं या अग्नि देव अपने ओरिजिनल स्वरूप से मूल स्वरूप से यज्ञ का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, कौन इतना तेजस्वी हो सकता है। ऐसे वे विचार कर रहे थे तब तक वामन भगवान उस यज्ञ मंडप में पहुंच गए। जो ही यज्ञ स्थान में पहुंचे तो संक्षिप्ता तस्य तेजस, वामन देव में इतना तेज था कि उनके तेज के सामने ब्राह्मण का तेज अग्नि का तेज फीका हो गया। यद्यपि यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण तपस्वी थे और उनमें बहुत तेज था लेकिन सहाग्नय ब्राह्मणों के तेज की बात तो दूर है, अग्नि देव का तेज भी बलि वामन देव के सामने फीका हो गया क्योंकि इनमें बहुत तेज था। वामन भगवान को देख करके बलि महाराज बहुत प्रसन्न हुए प्रमुदित, और सबसे पहले उनको आसन दिए, उनका स्वागत पूछे और इसके बाद कह रहे हैं कि प्रत्यग्रहण उनका विविध प्रकार से सत्कार किए। जो भी सत्कार किए उनका पद्य दिए और अर्घ्य दिए, कई एक सामग्री दिए, लेकिन सबसे आनंद पूर्वक उनका चरण धोवन किए। बलि महाराज के मन में बहुत प्रसन्नता थी क्योंकि वामन देव का रूप बहुत सुंदर लग रहा था। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मुक्त संग मनोरमम, वामन देव इतना सुंदर थे कि जो मुक्तात्मा है जिनके चित्त कहीं फंसता नहीं है उनका चित्त भी उस रूप पर रम रहा था। उसका कारण था सर्वा रूपानुरूपा वयवम। ऐसे लोक में आप देखिए तो कोई बौना होता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है लेकिन भगवान वामन देव के लिए कह रहे हैं कि मुक्त संग मनोरमम, जो मुक्तात्मा पुरुष हैं उनके मन को भी रमाने वाले थे। उसका कारण था कि रूपानुरूपा वयवम, इस संसार में देखते हैं कि कोई बौना है तो उसका उसके अंगों का साइज ठीक अनुपात में नहीं होता है, कोई कोई अंग बहुत बड़ा होता है कोई कोई अंग बहुत छोटा होता है, लेकिन वामन भगवान की विशेषता है कि रूपानुरूपा अवयवम, जो उनका साइज है उसी के अनुसार उनके अंग का आकृति और साइज भी है। वो बहुत सुंदर लग रहे थे। बलि महाराज प्रसन्नता पूर्वक सबसे पहले उनका चरण धोए, कह रहे हैं तत्पाद शौचम जनकल मसापहम सधर्म बिन मूर्धनि अधात सुमंगला, कि चरण धो करके अवनिज्य और तत्पाद शौचम उस चरण धोवन को सधर्मविद, बलि महाराज धर्म के सिद्धांत को जानते हैं, मूर्धनि अदधात अपने मस्तक पर उस चरण धोवन को रखे और उस चरण धोवन के विषय में कह रहे हैं जनकल्मसापहम। वो चरण धोवन की विशेषता है कि समाज के किसी भी व्यक्ति के पाप को धोने में समर्थ है। कितना भी व्यक्ति निम्न स्थिति में है फिर भी भगवान के चरण धोवन की विशेषता है कि उसके पाप को नष्ट कर देगा। और भगवान के चरण धोवन के विषय में कह रहे हैं कि केवल पाप को ही नष्ट नहीं करता बल्कि सुमंगलम हमारे अभीष्ट को प्रदान करने वाला है, जो हमारा अभीष्ट है उसको भी प्रदान करने वाला है। तो कह रहे हैं कि उस चरण धोवन को बलि महाराज अपने मस्तक पर धारण किए। और इसी क्रम में टिप्पणी कर रहे हैं, यद्देव देवो गिरिशश्चंद्र मौली दधार मूर्धना पर्याच भक्त्या। कह रहे हैं कि जिस चरण धोवन को शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी इस घटना का वर्णन कर रहे हैं और शिव जी के लिए तीन शब्द दे रहे हैं, यद्देव देव गिरिशश चंद्र मौली दधार मूर्धना पर्याच भक्त्या। शिव जी के लिए एक व्यक्ति है, तीन नाम क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे कुछ आशय है। बलि महाराज के लिए कह रहे हैं कि धर्मविद, धर्म के सिद्धांत को जानने वाले परम भक्ति के साथ उस चरण धोवन को अपने मस्तक पर रखे, और कह रहे हैं कि धर्म को जानते हैं यही सदाचार है, क्योंकि एक आदर्श के रूप में कह रहे हैं कि यद्देव देव जिस चरण धोवन को देवताओं में भी जो पूज्य हैं, देवताओं के भी देवता हैं, वे भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। वे कोई कह सकता है कि देवताओं के भी देवता हैं, महादेव हैं, बड़े व्यक्ति हैं, और बड़े व्यक्ति के स्वभाव में देखा जाता है कि कई एक चीज का संग्रह कर लेते हैं। जो धनी धनी लोग हैं उनके घर में जाइए तो दिखाने लगते हैं, या कन्याकुमारी से खरीद करके लाया, ये कश्मीर गया था तो खरीद करके लाया, अब उनके पास शक्ति है संग्रह कर लेते हैं। भाई शिव जी भी बड़े व्यक्ति हैं, अब मिल गया चरण धोवन रख लिए होंगे, लेकिन कह रहे हैं कि ना ऐसी बात नहीं है, जरूर महादेव हैं लेकिन उनमें संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है। यद्देव देव गिरिशश चंद्र मौली, जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो संग्रह कर लेते हैं, कई एक आध्यात्मिक चीज का भी संग्रह कर लेते हैं, लेकिन बहुत श्रद्धा नहीं होती है। इस संबंध में एक घटना याद आ जाती है। एक बार मैं एक मुख्यमंत्री के पास गए, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, भक्त लोग उनके पास ले गए, तो अपने घर के दरवाजे पर भी मिले, हम लोगों को लेकर के अपने घर में जा रहे थे, तो नीचे भगवान की मूर्ति थी, भगवान का विग्रह था, तो हम लोग वहां जा करके नमस्कार करने लगे। वे कह रहे हैं बाबा ठाकुर जी ऊपर हैं, ठाकुर जी यहाँ भी, इसके बाद कर ये तो हमारा बेटा गया था तो कहीं से खरीद करके ला दिया तो यहीं रख दिया हूँ। अब उनका बेटा गया था खरीद करके रख दे, यद्यपि हम लोग ऊपर गए तो बहुत प्रसन्नता हुई, उनकी पत्नी जो खुद मुख्यमंत्री रह चुकी थी ठाकुर जी का आरती कर रही थी, यह देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। हम लोग चार बजे के लगभग गए थे तो उत्थान आरती के समय खुद चामर डुला रही थी, तो देख करके प्रसन्नता हुई। लेकिन जो नीचे ठाकुर जी थे तो उनके विषय बाबा ठाकुर जी ऊपर ये तो हमारा बेटा गया था ऐसे खरीद करके ला दिया रख दिए। हम कह रहे हैं कि शिव जी जरूर बड़े व्यक्ति हैं लेकिन गंगा जी को संग्रह की प्रवृत्ति से नहीं रख लिए, क्योंकि उसके बाद शब्द दे रहे हैं यद्देव देव गिरिशः। शिव जी की स्थिति है कि वे वन में ही रहते हैं, पर्वत पर ही सो जाते हैं, और कोई सन्यासी नहीं है, वे गृहस्थ हैं, और ऐसा भी नहीं है कि पत्नी से खटपट हो, बहुत प्यारी पत्नी है, अपने पत्नी से इतना प्रेम करते हैं कि कथा के समय भी आकर के जांग पर भी बैठ जाते हैं तो हाथ ऊपर से बढ़ा देते हैं, अनुमोदन कर देते हैं। तो गृहस्थ हैं, लेकिन आज तक किसी फ्लैट का पोजीशन नहीं लिए, शायद बुकिंग भी नहीं किए हैं। गिरिश वे पर्वत में सो जाते हैं, तब कोई कह सकता है फिर उनको आवश्यकता है, संग्रह तो नहीं करते हैं, लेकिन वो 20 पान किए हैं तो उनको बहुत गर्मी लग रही, ठंडा के लिए गंगा जी को रख दिए हैं, तो कह रहे हैं कि चंद्रमौली वो जरूर 20 पान किए हैं, लेकिन उनके मस्तक पर चंद्रमा जी हैं, चंद्रमा से अमृत का स्राव होता है, तो स्वाभाविक शीतलता उनको प्राप्त है, तो आवश्यकता से भी नहीं रखे हैं। किस लिए रखे? पर्या के भक्तिया, केवल श्रद्धा से रखे हैं। और जिस चरण धोवन को शिव जी परम श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर रखते हैं, उसी चरण धोवन को बलि महाराज अपने मस्तक पर रखे। और बलि महाराज भगवान के रूप को देख करके उनसे प्रस्ताव करने लगे कि मैं समझता हूं कि आप कुछ मांगने के लिए आए हैं, जो आपके मन में इच्छा हो मांग लीजिए, कई एक विकल्प दे रहे हैं। लेकिन भगवान उनके वचन का अभिनंदन किए, कह रहे हैं कि जो तुम बोल रहे हो यह तुम्हारे कुल के अनुरूप है, क्योंकि तुम्हारे कुल में ऐसे ऐसे महान लोग हुए कि तीर्थ का अवसर आने पर वे विरत नहीं हुए, खास करके दान देने में और युद्ध करने में तुम्हारे पूर्वज अग्रगणी रहे हैं, उनका बहुत उत्तम स्थान है। दान के विषय में कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता विरोचन जानते थे कि ये देवता है, हमारे शत्रु हैं, लेकिन ब्राह्मण का रूप धारण करके आए तो अपने जीवन का दान कर दिए। तो दान देने में तुम्हारे पूर्वज बहुत उदार हैं, और जहां तक युद्ध की बात है, वीरता की बात है, तो तुम्हारे प्रपितामह हिरण्याक्ष तो इतने वीर थे कि एकायुध केवल एक हथियार लेकर के, केवल गदा लेकर के, एक आयुध लेकर के और दिग्विजय के लिए निकल गए, लेकिन कोई सामने नहीं मिला, कोई चुनौती को स्वीकार नहीं किया। अब संजोग की बात है कि पृथ्वी का उद्धार करते हुए भगवान आ रहे थे और भगवान वध कर दिए, विष्णु वध कर दिए, जरूर वध कर दिए तुम्हारे प्रपितामह का, लेकिन नात्मानम जैनम मन मेने, लेकिन कभी भी अपने को विजयी नहीं मानते। क्यों नहीं विजयी मानते हैं? वध कर दिए तो विजयी क्यों नहीं मानते? सद वीरजम भूर्य अनुस्मरण, जब उसके पराक्रम का उनको स्मरण होता है तो यही सोचते हैं कि तो संजोग था कि हम विजय प्राप्त कर लिए, बहुत शक्तिशाली था। तो ऐसे भगवान ने बलि महाराज के कुल की प्रशंसा करते हुए वर मांगे कि हम 3 डेग भूमि चाहते हैं। बलि महाराज बहुत क्षुब्ध हुए कि हमारे पास आकर के और 3 डेग भूमि मांग रहा है, और सम्मितानी मम, अपने पैर से कितना है मूर्ख है, तेज तो बहुत है लेकिन केवल शरीर का तेज है, बुद्धि नहीं है, बालों से तुम एकदम मूर्ख हो। तो कह रहे हैं कि हमारे पास आए हो और भूमि ही मांग रहे हो, तो कम से कम इतनी भूमि मांग लेनी चाहिए कि जीवन भर काम चलता रहे। लेकिन वामन देव कहने लगे ना, संतोष का बहुत महत्व है। वे सिद्धांत देने लगे कि वास्तव में असंतोष ही मूल कारण है जन्म मृत्यु का, इस संस्कृति का, जन्म मृत्यु में जो पड़े हैं उसका कारण है असंतोष, और संतोषो मुक्तई स्मृत, और व्यक्ति संतोष को धारण करे तो मुक्त हो जाएगा, जन्म मृत्यु से ऊपर चला जाएगा। और खास करके ब्राह्मण के लिए तो संतोष बिल्कुल आवश्यक है। वामन देव कहने लगे, जो ब्राह्मण यदृच्छया प्राप्त संयोग से प्राप्त धन से संतुष्ट रहता है तो तस्य तेजो भी वर्धते, उसका तेज बहुत बढ़ता है, और कदाचित उसके मन में लोभ आ गया, असंतोष आ गया, तो उसका तेज वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे कोई प्रज्वलित अग्नि है उस पर कोई पानी डाल दे, तो असंतोष से ब्राह्मण का तेज समाप्त हो जाता है और लोभ का कभी अंत भी नहीं होगा। तो हम तो तीन देग भूमि चाहेंगे, यद्यपि शुक्राचार्य मना कर रहे थे, बलि महाराज तैयार हो गए तो शुक्राचार्य मना कर रहे थे कि अरे विरोचन का पुत्र यह ब्राह्मण नहीं है, विष्णु है, देवानाम कार्य साधक, ये तो ब्राह्मण के देश धारण करके आया है देवताओं का काम बनाने के लिए। और शुक्राचार्य कहे कि अरे मूर्ख, सर्वस्वम विष्णवे दत्वा मूढ़ वर्तिष्यसे कथम, तुम सब कुछ इस विष्णु को दे देगा तो तुम्हारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, तुम्हारी जीविका का निर्वाह कैसे होगा, तुम ऐसा मत करो। लेकिन बलि महाराज कहने लगे कि अरे यदि ये विष्णु भगवान है तब तो मैं अवश्य इनको प्रदान करूंगा। वे सिद्धांत देने लगे कि आप जो ब्राह्मण हैं, वेद शास्त्र के जानकार हैं, तो आप लोग तो यज्ञ का अनुष्ठान करके इन्हीं की आराधना करते हैं, और वही भगवान अपने से जब यज्ञ में आ गए तब तो इनके इच्छा को पूर्ण करना सब प्रकार से कर्तव्य है, मैं इनके इच्छा को पूर्ण करूंगा। जब बलि महाराज अपने गुरु की अवज्ञा किए, उनके गुरु साप दे दिए, दृढ़ पंडित मानज्ञ, वे स्पष्ट साप देने लगे कि तुम हमारे अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हो क्योंकि तुम उजड़ हो और अपने को पंडित मानते हो लेकिन तुम मूर्ख हो। यद्यपि शुक्राचार्य ऐसे बोल रहे थे लेकिन सरस्वती जी तो बलि महाराज की प्रशंसा ही कर रही थी, जैसा आप लोग सुने परम पूज्य वैष्णव महाराज बतला रहे थे कि यद्यपि शुक्राचार्य बोल रहे हैं दृढ़म, दृढ़म मैंने स्तब्ध कठोर, और पंडित मानज्ञ, तुम पंडित मानी अपने को पंडित विद्वान मानते हो लेकिन अज्ञ मूर्ख हो, हमारे शासन का उल्लंघन कर रहे हो। लेकिन सरस्वती जी तो वास्तव में कह रहे हैं दृढ़म, तुम अपने भक्ति में एकदम दृढ़ हो, और पंडित मान्य, तुम पंडितों का सम्मान करने वाले, पंडितों द्वारा तुम मान्य हो, पंडित लोग विद्वान लोग तुम्हारा सम्मान करते हो, यह तुम परम विद्वान हो। जो हो शुक्राचार्य उनको मना कर रहे थे, साक्षात अपना गुरु ही मना कर रहा है। बलि महाराज थोड़े देर तक चुप रहे लेकिन विचार करके कहे कि ना मैं तो दान दूंगा ही। जब ही दान देने के लिए तैयार हुए तो उनके भाव को जान करके, उनके संकल्प को जान करके उनकी पत्नी सोने के बर्तन में जल लेकर के आई संकल्प के लिए। कोई भी दान देना होता है तो उदक पूर्वकम जल लेकर के संकल्प करते हैं, तो यद्यपि विंध्यावली संकल्प के लिए जल लाई लेकिन वामन देव को भगवान के चरण धोने में इतना आनंद है कि पुनः एक बार उनका चरण धोए। और जब दान देने के लिए तैयार हुए तब अब वामन देव का रूप बदल गया, तद वामनम रूप मवर्धताद्भुतम, अद्भुत ढंग से वामन देव का रूप बढ़ने लगा। भूखम दिशोदर विवरा पयोधय तिर्यंग देवा ऋषय यदास्वत, उनका इतना रूप बढ़ गया कि सारा भूमंडल, सारा आकाश, सारी दिशाएं या जो भी पताल इत्यादि है सब उनके भीतर दिखने लगा। और इसी क्रम में कह रहे हैं आज के श्लोक में कि काये बलिष्ठस्य महाविभूते सहर्तृगाचार्य सदस्य एतद् ददर्श विश्वम त्रिगुणम गुणात्मके भूतेन्द्रियासा भूतेन्द्रियार्था सहजीव युक्तम। केवल आकाश पताल को ही नहीं देखे, कह रहे हैं कि ददर्श बलि महाराज देखे, कहां देखे, काये वामन देव के शरीर में देख रहे हैं और उनके शरीर का विशेषण दे रहे महाविभूते, जो सदैव स्वर्ग पूर्ण भगवान का शरीर है, तो उसी शरीर में देख रहे हैं सह ऋत्विक आचार्य सदस्य एतर। ये सारे संसार को या यज्ञ मंडप को तो देख ही रहे हैं, वे प्रकट बलि महाराज वामन देव के शरीर में देख रहे हैं कि सारे ऋत्विक लोग वही हैं, आचार्य वही हैं। और ददर्श विश्वम त्रिगुणम गुणात्मक है, ये सारे संसार को वामन देव के शरीर में देखे, वामन देव के शरीर का विशेषण दे रहे हैं गुणात्मक है, जहां से सारे विश्व की उत्पत्ति हुई है। भगवान स्पष्ट है गीता में कहते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, इस संसार में कुछ भी दृश्य है वो सब मुझसे निकला है, इसी भाव को व्यक्त कर रहे हैं गुणात्मक है। और सारे संसार को देखे और पंच महाभूत इसको देखे, और केवल पंच महाभूत को ही नहीं देखे, मिट्टी जल को ही नहीं देखे, कह रहे हैं कि इंद्रियों को भी देखे और इसके जो विषय हैं उसको भी देखे और जो आशय है चित्त इसको भी देखे। आप सृष्टि का क्रम पढ़ते हैं वो स्पष्ट है, आप सुनते हैं पढ़ते हैं देखते हैं कि सूक्ष्म चीज से स्थूल का निर्माण हुआ है, पहले तन्मात्रा हुई उसके बाद पंच महाभूत। तो ये उल्टे क्रम में कह रहे हैं कि पहले स्थूल चीज को तो देखे ही, लेकिन केवल स्थूल चीज को ही नहीं देखे, इंद्रियों को भी देखे। ऐसे तो शरीर देख रहे हैं लेकिन शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो कह रहे इंद्रियों को भी देखे और इंद्रियों से भी सूक्ष्म इंद्रियों का विषय है उसको भी देखे और उससे भी सूक्ष्म जो अंतःकरण है उसको भी देखे। तो इस प्रकार यह वर्णन किया जा रहा है कि जब वामन देव अपने शरीर का विस्तार किए तो उनके शरीर में ही सारा ब्रह्मांड दिख रहा है, यज्ञ मंडप के एक एक पदार्थ दिख रहे हैं और इस संसार के कोई भी वस्तु चाहे वो सूक्ष्म हो स्थूल हो सब दिख रहा है। यह भगवान का विशेषता है। तो सिद्धांत यह है कि किसी को यह अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं, अरे भगवान से बाहर कुछ नहीं है, सब भगवान का ही है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को कुछ देना वैसे ही है जैसे कभी कभी व्यक्ति गंगा जी का पानी उठा करके गंगा जी में ही डाल देता है, उसी से पूजा कर देता है। तो हम भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम अपना चीज दे रहे हैं, ये तो भगवान का ही है, इससे अहंकार नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब तक हम भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तब तक वह अपने काम में नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम किया, धन अर्जित किया या और भी वस्तु अर्जित किया, जब तक भगवान को अर्पित नहीं करेगा तो उसके लाभ के लिए वह नहीं हो सकता। प्रहलाद महाराज इसी श्रीमद् भागवतम में उदाहरण दिए हैं, वे कह रहे हैं नैवात्मनः प्रभु रयम् निज लाभ पूर्ण मानम जनाद विदुष करुणो व्रीडित। वे कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो अज्ञ पुरुषों से सेवा स्वीकार कर लेते हैं, पूजा स्वीकार कर लेते हैं, तो अपने लिए उसको नहीं स्वीकार करते हैं, नैवात्मनः अपने लिए आप नहीं स्वीकार करते हैं, क्योंकि निजलाभ पूर्ण भगवान को कुछ आवश्यकता नहीं है, वे तो अपने आनंद से ही पूर्ण हैं। तब क्यों स्वीकार करते हैं? तो करुणो वृणी, वे करुणा करके स्वीकार कर लेते हैं। वे क्या करुणा प्रदर्शित हो रहा है? तो कह रहे हैं कि यद्यत जन्म भगवते विदधित मानम तच्चात्मने, जो सामग्री भगवान को व्यक्ति अर्पित करता है तो वही अपने काम का होता है। एक उदाहरण से इस बात को समझा रहे हैं कि यथा मुखफ्री, जैसे कोई व्यक्ति किसी दर्पण के समक्ष उपस्थित है और उस दर्पण में उसके मुख की प्रतिच्छवि आ रही है, अपने चेहरे को देख रहा है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के मन में स्पृहा है कि हम अपने चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाएं, और डायरेक्ट सौंदर्य को बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ा सकता। मान लीजिए कि ललाट पर तिलक लगाना चाहे तो लाख प्रयास करे अपने प्रतिबिंब के ललाट पर तिलक नहीं लगा सकता। वो प्रयास भी करेगा तो अधिक से अधिक इतना करेगा कि शीशा को गंदा करेगा। तिलक तो नहीं लगा सकता, लेकिन अपने मूल ललाट पर तिलक लगाता है तो स्वतः ही प्रतिबिंब तक पहुंच जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान को सेवा अर्पित करता है, वस्तु अर्पित करता है, तो वास्तव में वही उसके अकाउंट में आता है, वही उसके हित में आता है। तो भगवान जगत के हित करने के लिए सेवा स्वीकार कर लेते हैं। सेवा स्वीकार करने से उनके संपत्ति में वृद्धि नहीं हो जाती। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गंगा जी का पानी उठा करके गंगा जी में डालते हैं तो आपके एक अंजलि पानी डालने से गंगा जी का पानी नहीं बढ़ जाता है। तो वैसे ही सारा सामग्री भगवान का है, और भगवान को हम अर्पित करते हैं तो एक बात है कि भगवान का ही अर्पित कर रहे हैं, और भगवान को उससे बहुत भारी लाभ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनके संपत्ति में वृद्धि हो जाएगी, उससे लाभ हमारा होता है, हमारा बंधन दूर हो जाएगा। तो भगवान भक्तों के लाभ के लिए पूजा स्वीकार करते हैं। यहाँ इस श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान के शरीर में सब चीज देखे। अरे भगवान के शरीर में सब चीज देखे तो बाहर कैसे आ गया? लेकिन सिद्धांत समझना चाहिए कि भगवान के श्रीविग्रह में ही सारे संसार की स्थिति है, भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है, भगवान से ही सब कुछ निकला है। और कभी कभी लोग तर्क करते हैं कि जब भगवान से संसार निकला तो अब भगवान तो खाली हो जाएंगे। खास करके मायावादी लोगों का सिद्धांत है कि भाई संसार निकला तो परिणामी हो जाएंगे, मतलब उनके में कमी आ जाएगी, और इसीलिए वे लोग निराकार मानते हैं या संसार को विवर्त मानते हैं कि इसमें दोष आ जाएगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद जी से बात करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहे हैं कि अरे भगवान की बात तो दूर है, इस संसार में भी कोई कोई वस्तु देखा जाता है कि उससे कई एक चीज निकल रहा है, बहुत चीज निकल रहा है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप स्यमंतक मणि का नाम सुने हैं? स्यमंतक मणि से रोज 80 भर सोना निकलता है, लेकिन स्यमंतक मणि में कोई कमी नहीं आ रही है। जब प्राकृत वस्तु की यह शक्ति है तो भगवान के लिए यह क्या विचित्र बात है कि सारा संसार भगवान से निकला है लेकिन भगवान में कोई परिवर्तन नहीं है, अच्युत है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी संकीर्ण है कि हम इस बात को समझ नहीं पाते। इसी से इस सिद्धांत को अचिंत भेदाभेद कहा गया है। अचिंत भेदाभेद का अर्थ यह है कि संसार भगवान से भिन्न है और अभिन्न भी है। लेकिन अब इस संसार में हम लोगों को बात ही नहीं समझ में आएगी कि एक ही चीज भिन्न और अभिन्न कैसे हो जाएगा। तो इसी से जीव गोस्वामी कहते हैं कि मनुष्य बुद्धि के लिए अचिंत्य है। वास्तव में जगत और भगवान के संबंध पर विचार करें तो स्पष्ट गजेंद्र स्तुति में कहा गया जस्मिन निदम, जिसमें ये सारा संसार है, जस्मिन निदम यतस्केदम, जिससे संसार निकला, जे नेदम, जिसके द्वारा यह संसार बनाया गया है। अरे बनाने की बात तो दूरी, यह इदम जो स्वयं यह संसार है, लेकिन फिर भी अस्मात् परस्मात् यह परे, इस दृश्य संसार से या दृश्य संसार का जो कारण है सूक्ष्म चीज, इससे भी वह परे है, दोनों से परे है। तो इस प्रकार यद्यपि भगवान के श्री विग्रह में सारे चीज दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर है, लेकिन फिर भी भगवान अविश्वम, इस संसार का कोई भी चीज भगवान नहीं है। कल असीम कृष्ण प्रभु चर्चा कर रहे थे कि भगवान के लिए विश्वम अविश्वम ये दोनों शब्द कैसे दिया गया। इसका आशय यही है कि सारा विश्व भगवान से निकला है, लेकिन इस संसार का एक चीज भी भगवान नहीं है, भगवान सर्वथा विलक्षण है। इसी को अचिंत भेदा भेद कहा गया है। और गजेंद्र जी कह रहे हैं कि हम तो आपको समझ नहीं सकते, हम तो केवल आपको प्रणाम करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी अवसर पा करके इस सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे हैं कि यद्यपि बलि महाराज भगवान के श्री विग्रह में सारे संसार को देख रहे हैं, लेकिन कभी भ्रम नहीं होना चाहिए कि भगवान का श्री विग्रह इस माइक चीज से, संसारिक चीज से बना है। भगवान का श्री विग्रह इन सारे पदार्थ से बिल्कुल विलक्षण है, ये भगवान का स्वरूप है। तो ऐसे बलि महाराज ने वामन देव अपने रूप को बढ़ाए, बलि महाराज दर्शन कर रहे हैं, उनके शरीर में क्या क्या देख रहे हैं, इन सब चीजों का वर्णन आगे के श्लोकों में है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?
हरे कृष्णा। प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु अचिंत भेदाभेद तत्व के विषय में उदाहरण से समझाए हैं कि जैसे सूर्य भगवान है और हम रूम में बैठे हुए हैं और खिड़की के द्वारा उसका प्रकाश रूम में आया है, तो सूर्य रूम में आए भी हैं नहीं भी आए हैं? और साक्षात सूर्य रूम में पहुंच जाएंगे, अभी इतना हीट है, रूम जल के भस्म हो जाएगी
जी,
और नहीं आए हैं तो उनके बिना प्रकाश नहीं है, तो ये उसका उदाहरण है। हाँ। अचिंत्य भेदाभि तत्व।
बहुत अच्छा, बहुत स्पष्ट, धन्यवाद। हाँ, माइक दे दीजिए, उधर कुछ कुछ ना चाहता।
हरे कृष्णा प्रभु जी, शिव जी पार्वती जी को गोद में बैठा के भागवत कथा कह देते हैं, इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं दुनिया के लिए, जगत के लिए?
जगत के लिए तो कुछ नहीं सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसा तो मैं नहीं कुछ कहा कि कुछ सिद्ध करने के लिए कर, हम तो इतना ही कहा कि उनकी पत्नी प्यारी है, अब आ गई और फिर भी का अनुमोदन कर दे, हाथ बढ़ाने का अर्थ है कि उसका अनुमोदन कर दिए। कुछ सिद्ध करने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन अब जो लोग इस पर दोष बुद्धि करते हैं तो उनको समझना चाहिए कि जो बहुत तेजस्वी हैं तो कई एक चीज उनके लिए दोष नहीं होता, एक साधारण व्यक्ति के लिए जो चीज दोष है तो तेजी अंशम न दोष आया, जो बहुत तेजस्वी हैं तो उनके लिए दोष नहीं है। उदाहरण दिया गया है अग्नि का, जैसे अग्नि कुछ भी खा जाता है तो उस पर कोई बंधन नहीं लगता, दोष नहीं लगता। तो शिव जी कोई सिद्धि के लिए या कोई शिक्षा के लिए व्यवहार नहीं कर रहे हैं, यह उनका अपना व्यक्तिगत चीज है और शिव जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि इसको दोष के रूप में कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति इसमें दोष किया उसका पतन हो गया। अब उनका ऐसा व्यक्तित्व है इस लेवल के हैं कि अब इसको बहुत बुरा नहीं मानते हैं, सामान्य सदाचार से ऊपर के व्यक्ति हैं। देखते हैं ना कि उनका क्या व्यक्तित्व है। जिस बीच से सारा संसार जल रहा था, सब लोग जल रहे थे, कहीं प्राण नहीं था, लेकिन उस बीच को भगवान परितलीकृत व्याप्त था पूरे संसार में, लेकिन उसको अंजलि में लेकर के और पान कर गए। और शिव जी का व्यक्तित्व विलक्षण है, इसलिए कोई कोई घटना भी विलक्षण दिखती है तो पार्टिकुलर शिव जी के लिए ही है। किसी आदर्श की स्थापना या किसी सिद्धि के लिए यह व्यवहार नहीं है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की है? अच्छा, हाँ हाँ, कुछ प्रश्न।
एक शिक्षा गृहस्थों के लिए, शिवजी से ये प्राप्त हो सकती है कि शिवजी अपने पत्नी को गोद में बिठाकर भगवान की कथा कह रहे हैं, तो गृहस्थ लोग जो ये कहते हैं कि हम माया में हैं, तो उनके लिए शिक्षा है कि अगर गृहस्थ आश्रम में भी है, पत्नी साथ में भी है, तब भी भगवान के गुण रूप लीला आदि को कहना चाहिए।
हाँ, धन्यवाद, बहुत अच्छा।